ചടങ്ങും ചായാമ്മ
ഓം നമ സിദ്ധേ ഓം നമ സിദ്ധേ ഓം ശുദ്ധാത്മനെ നമ നമോ അരിഹന്താണം നമോ സിദ്ധാണം നമോ അയരിയാണം നമോ അധ്യായാണം നമോ നോയെ സവസാഹൂണം സുരസുരനരപ്രതിമന്ദനെ പ്രവിനാഷ്ടവാതി കർമ്മണി പ്രണമണ കരോ ധർമ്മകർത്ത തീർത്ഥ ശ്രീ മഹാവീരനെ വരിശേഷ തീർത്ഥങ്കരനെ ക്ഷാസിദ്ധ ശുദ്ധാസ്തിത്വനെ മുനിഗാനദ്രവചാരിതൃതപവീരാചരണസംയുക്തനെ കേശവനെ സാകേതകഥാ പ്രത്യേകനെ വന്ദോ മനുജക്ഷേത്രെ വർത്തതാരഹന്തനെ അരഹന്തനെ സാക്ഷേതനെ യഃ നമസ്കരണ കരിയേരിതെ ഗണധരനെ അധ്യാപകോനെ സർവസാധുസമൂഹനെ ശുശോദർശന ജ്ഞാനമുഖ്യ പവിത്രാശ്രമ പാമിനെ പ്രാപ്തി കരോ സാമിനി ജേനാപി ശിവപ്രാപ്തിവനെ
ആചാര്യ ശ്രീ കുൻകുൻ ഭഗവാൻ ദ്വാരാ രചിത യഹ പ്രവചനസാർ നാമക പരമാഗം ഗ്രന്ഥ ഹൈ उस पर अमृतचंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जैसेनाचार्य ने तात्पर्य युक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से नौवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 94 पर हम आ गए 205 और 206 नंबर की गाथा हमने पढ़ी थी। अब उसी का यहाँ पर गुरुदेव उसकी टीका का प्रवचन देखे करेंगे उसको देखते हैं। देखो गुजराती हिंदी पाछड़ छे उसकी टीका एक टीका हिंदी में से उन्होंने पढ़ी थी ना मूल पुस्तक में से उसका भी गुजराती प्रवचन चलेगा। ये जो यथाजात रूप धर जो बात हुई थी ना उसको बहिरंग और अंतरंग की अपेक्षा उन्होंने बताया था। कल हमने उसको पढ़ा था मूल टीका में अभी उसका प्रवचन पढ़ रहे यहाँ पर पेज नंबर 94 गाथा लिखी है ना उसके नीचे से पढ़ रही हूँ मैं 94 आपको 94 उनको जरा देख प्रथम तो अपने से मिला ना यथोक्त क्रम से जैसे बताया है वैसा यथोक्त क्रम से बिना ली है। पहले हमने पढ़ा था कि जो श्रामण्य जो धारण करना चाहता है श्रामण्यार्थी कहा था पहले अपने घर के सदस्यों से विदा लेता है माताजी पिताजी पत्नी पुत्र सबसे बोलता है। फिर बाद में पंचाचार बताया था पंचाचार अंगीकार करता हूं ऐसा कहा था वहां पर ऐसा कहा था ना यथाक्रम से ज्ञानाचार व्यवहार का विनय आदि का बंतर कहा था। वह पहले से कहा था कि तुम मेरे नहीं यानी वो ज्ञानाचार आचारों को कहता है कि तुम मेरे नहीं, मेरे में और तुझ में कुछ संबंध नहीं, ये तुझ में जो करना। मैं जानता हूं शुद्धात्मा का, मेरा नहीं, यानी तुम शुद्धात्मा के ने मेरे नहीं हो। किसको बताए? पंचाचार को। पंचाचार रूप जो शुभ भाव है उसको कहता है तुम मेरा नहीं हो। और फिर अंगीकार करता हूं, ऐसे वो चरणारियों की शैली है, व्यवहार नहीं का कथन है। हाँ, ज्ञानाचार, समय पर पढ़ना, विनय से पढ़ना, निन्नों का दोष न करे। निन्नों का अर्थ क्या देखा था? अपने गुरु का नाम छिपाना, उसको निन्नों दोष कहते हैं। ऐसा दोष वो नहीं करता। जिसके पास पढ़ा हो उसे गुप्त रखना नहीं, लिखा ना। ऐसा जो विकल्प है, काल, विनय आदि, और समकित का, आठ प्रकार का, निशंक आदि जो विकल्प है, जिसको क्या क्या कहा था? दर्शनाचार। सम्यक तो संबंधी जो आठ दोषों से रहित, और चारित्र का, पंच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति, तेरह बताए थे। विकल्प रूप यानी भेद रूप जो तेरह आचार है, और तपाचार में जो विकल्प ध्यान आदि और अनशन उनोद्री आदि का विकल्प है, यानी बारह प्रकार के तप बताए हैं, अंतरंग और बाहिरंग, उनका जो विकल्प है, यहां सब विकल्पात्मक लिए है, निश्चय की बात नहीं है। यहां पर व्यवहार, विकल्प, शुभ भाव, वह मेरा शुद्धात्मा का तू है नहीं, ऐसे श्रावण्यार्थी स्वयं ये आचार संबंधी कह रहे हैं। मैं जानता हूं, परंतु तुम्हारा तब तक हम निमित्तपने आलंबन लेते, तब तक बताए कंडीशन कायम रखने के लिए नहीं, वो आदर भाव से नहीं। तब तक, कब तक? ये जब तक वितराग पूर्ण नहीं हो जाएगा, कि जब तक तुम्हारा अभाव करके पूर्ण वितराग न हो वहां तक। क्या कहे? उसी को कह रहे पंचाचार को, कि तब तक अवलंबन करूंगा जब तक तुम्हारा ही नाश करके मैं पूर्ण रूप से वितराग न हो जाऊं। समझ में आया? अरे कैसा वितराग मार्ग, उसकी शुरुआत और पूर्णता के मध्य में कैसी दशा होती है, जिसको हम कहेंगे साधक दशा कैसी होती है। शुरुआत कहां से हुई? समय दर्शन से, और पूर्णता पूर्ण वितराग हो जावे, केवल ज्ञान प्राप्त हो जावे। शुरुआत में दशा कैसी, मध्य में दशा कैसी, और पूर्ण की दशा कैसी, समझ में आया? उससे न्यून, न्यून यानी कम, उससे विपरीत यानी उसके उल्टा पुल्टा, ऐसा कोई उससे अतिरिक्त यानी अन्य कोई, ऐसी तीन स्थिति जहां हो वहां तो मिथ्यात्व भाव है। क्या कहा? जैसा मोक्ष का पूरा मार्ग है, शुरू से लेकर अंत तक, वो जैसा है वैसा समझना चाहिए, उससे कुछ कम जाना। अरे मुनि दशा होती ही नहीं है, या उसमें कुछ बस डायरेक्ट समय दर्शन हुआ तो वितराग हो जावे, ऐसी कोई बात नहीं। न्यून माना उन्हें, न्यून नहीं चलेगा। विपरीत यानी नहीं, ये शुभ भाव करते करते मोक्ष हो जाएगा, ये क्या माना उसने? विपरीत माना, सही मोक्ष मार्ग नहीं माना, या अतिरिक्त यानी इसके अन्यथा अलावा अन्य दूसरे कोई मार्ग हो गए। कोई कहे कोई भक्ति का मार्ग है, हाँ कोई कैसा कैसा मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ऐसे अलग अलग कल्पना है लोगों की, तो ये अन्यथा अतिरिक्त माना। ऐसी तीन स्थिति जहां हो वहां तो मिथ्यात्व तो भाव है। आता है ना रत्नकरण शावकाचार, रत्नकरण शावकाचार में कहां लिखा है मालूम है? समय ज्ञान अधिकार, समय ज्ञान अधिकार में लिखा है। देखो क्या कहे, न्यून नहीं, अधिक नहीं, विपरीत नहीं। कम मानता है, अधिक मानता है, या विपरीत मानता है, या जानता है लेना?
अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और
अवसर्ग, नहीं वो अलग बात है,
ये लक्षण के दोष है।
हाँ, वो लक्षण
उसको भी अप्लाई कर सकते
हैं। नहीं,
विपरीत की जगह असंभव लगाओ ना,
यानी न्यून में अप्लाई होता है। इस तरह से आप यानी खींचाता नहीं करके हम बिठा सकते उसमें, परंतु ये जैसा है उससे कम जाना, अधिक जाना या विपरीत जाना,
ये सही बता रहे हैं। हाँ। उनके लिए हमें डाउट नहीं है, लेकिन क्या हम वो तीन लक्षणों की जो बात देखी है,
हाँ।
अव्याप्ति, अति व्याप्ति और असंभव, ये उसमें
लक्षण के दोषों में, हाँ, लक्षणाभास में हम लगा सकते। बाद में इन लोगों को समझाते थे ना, फिर मिथ्यात्व आता है ना, ओछू अधिक अने विपरीत, एक अंश भी न्यून मानना, जैसी चीज है उसे न्यून माननी, न्यून यानी कम है उसे कम मानना, वह भी मिथ्यात्व भाव है। एक अंश भी अधिक मानना वह भी मिथ्यात्व भाव है। क्या अधिक माना? अरे स्वयं का भी करे दूसरे का भी करे, अधिक माना उसकी, और है उससे विपरीत मानना वह भी मिथ्यात्व है। कहते हैं यथोक्त क्रम से सम्यक ज्ञान हुआ है, सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, ये ज्ञान को ही ज्योति कहने की पद्धति है, प्रकाश भी कहते कहीं कहीं है ना, ये बाह्य प्रकाश की बात नहीं समझना, ऐसी कोई अंदर ज्योत भी कुछ प्रकट नहीं होती है, प्रकट की है और विदा ली है, माता पिता स्त्री की विदा ली है और पंचाचार आदि ग्रहण किए है, ऐसा कहा था ना, अंगीकार करता हूं। यथा जात रूप धर हुए, अर्थात सहज रूप धारण करने वाला, कहो अभी तो आज्ञा मांगते हैं, अभी गुरु देंगे तो भी हुआ, ऐसा भावी निगमने की शैली की बात करते हैं, यानी अभी तो आज्ञा मांग रहे फिर भी धारण किया ऐसा कहेंगे। यथा जात रूप धारण किया, वो तो यथा जात रूप अंतरंग में कब होगा? जब अभी दीक्षा लेके ध्यान में बैठेंगे, सातवां गुण स्थान प्रकट होगा तब होगा, फिर भी भावी नैगम ने, यानी अभी होने वाली है पर्याय, तो उसको अभी बता रहे, अभी तो व्रत सुनेगा वह बात आएगी ना, लेकिन उसके पहले भविष्य में ऐसा होने वाला है वह बात पहले से नक्की करते हैं। यह मैंने लिया, यानी मैंने ये धारण किया, मैंने यथाजात रूप धारण किया, ऐसा भी कहेंगे, अभी सारे व्रत वगैरह मुनि को कहेंगे। हाँ। यथाजात रूप धर हुए आत्मा के यथाजात रूप धरपने के कारणभूत, अयथाजात, सॉरी वही तो मैं सोच रही थी, कल हमने अयथा की बात की थी, अभी मैं पढ़ते पढ़ते यथाजात बताया। क्या कहते हैं? आत्मा कैसा हुआ भी यथाजात रूप, जैसा स्वभाव है वैसा पर्याय में प्रकट हुआ, पर पहले कैसा था? अयथाजात रूप था। उसका कारण क्या था? कल हमने पढ़ा था मोह राग द्वेष, वो बताएंगे अभी। तो उसके कारण वो कहते हैं भगवान आत्मा मुनिपने में यथाजात वीतराग स्वभाव, यथाख्यात जैसा है वैसा, जैसे बताया है वैसा, यथाख्यात चारित्र आता है, लेकिन यथाजात यथाख्यात जैसी आत्मा की शुद्ध वीतराग से प्रसिद्धि है, ऐसी प्रसिद्धि की, समझ में आया? ऐसे आत्मा के अयथाजात रूप धरपने के कारणभूत मोह राग द्वेषादि भावों का अभाव होता ही है। क्या कहते हैं? अभी यहाँ मोह राग द्वेष का अभाव हो जाएगा, उसके कारण अयथाजातपना था, अभाव होकर अभी यथाजातपना उत्पन्न हो जाता है धर्मी को, यानी वो सम्यक दृष्टि ऑलरेडी है ऑलरेडी, साधु को ओ यथा जात रूप धर ऐसा मोह मिथ्यात्व और राग द्वेष, देखो उसका अभाव होता है, अभाव होता ही है। संज्वलन के एक कषाय का अंश रहा है उसकी यहाँ गिनती नहीं, उसको यथाख्यात जैसा बता दिया। अभी तो संज्वलन का उदय है, अभी तो मुनिपना धारण करने वाले हैं, किया ऐसा कहेंगे हम भावी नैगम से, फिर भी अभी सातवां गुण स्थान यहाँ प्रकट होगा, सातवां छठवां चलेगा, और अभी तो श्रेणी चढ़ के बाद में यथाजात हो गए, यथाख्यात होगा, अभी कह देते हैं, अभी जो बाकी है ना वो नहीं के बराबर है, इसलिए वो यथा जैसा है वैसा प्रकट किया ऐसा कहने की पद्धति है। यहाँ क्या लिखा देखो, संज्वलन के एक कषाय का अंश रह गया, एक कषाय ने चार कषाय में से चौकड़ी में से एक ऐसा भी कहेंगे, या एट ए टाइम क्रोध या मान या माया लोभ ऐसा रहता है, एक समय में कोई एक है इसलिए भी एक कहेंगे, कहने की पद्धति है। परंतु एक कषाय चौकड़ी रहेगी अभी, है ना, अनंतानुमंदी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण नहीं रही, नहीं नहीं उसका उदय नहीं है, अभाव द्रव्यनियोग अभाव कहेगा, तो यहाँ बाकी कषायों का अभाव होगा कि नहीं होगा सत्ता में से? अनंतानुबंधी का हो सकता है अगर क्षायिक समय दृष्टि है तो, बाकी अप्रत्याख्यानावरण का होगा कि नहीं होगा सत्ता में से अभाव? वह कहाँ होता है आपको मालूम नहीं है? हाँ, नवे गुणस्थान में जाके अभी उदय का अभाव हो रहा है, पड़ा रहेगा अंदर, उसका उदय नहीं होगा मुनियों। हाँ, सत्ता से चल, कौन से क्षपक श्रेणी में? उपशम श्रेणी में तो उपशमित होगा, दबे रहेगा।
ये विषय आपका हुआ नहीं?
हाँ, वो हुआ नहीं है फिर भी, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं ना, वो हमेशा वो बाकली वाले वगैरह पूछते थे, चौथे वाले ने अनंतानुबंधी का क्षय किया, पांचवे वाले ने अप्रत्याख्यानावरण का किया, और फिर पांचवे वाले ने प्रत्यक्ष मिलने, ऐसा नहीं होता, उसका क्षय श्रेणी में होता है। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्षपक श्रेणी में होता है, उपशम श्रेणी में दब, हाँ दब जाता है,
उपशमित होता है,
उपशमित। एक किस प्रकृति है ना चारित्र होने की, वो दबी रहती है, उसी को उपशम चारित्र। जैसे उपशम सम्यक तो हुआ था, दर्शन मोहिनी को दबा दिया था, है ना, प्रथम उपशम हुआ था, ये द्वितीय उपशम श्रेणी में हुआ था। ऐसे श्रेणी चढ़ता है तो उपशम श्रेणी चढ़ता है तो क्या होता है, चारित्र मोहिनी की जो 21 प्रकृतियां हैं, कौन सी, अनंतानुबंधी को छोड़कर, हाँ उनका क्या होता है, उपशम हो जाता है चढ़कर उतरने में। ग्यारहवें में पूर्ण उपशम है, किसी का भी उदय नहीं है, फिर उतरते उतरते क्रम से किसका किसका उदय होता है? नहीं, 8, 9, 10 और 11, फिर 11 में से 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7 और 6। हाँ, यानी जिस क्रम से चढ़े उसी क्रम से नियम से उतरते, कोई 11वें में से डायरेक्ट पहले में चला जावे ऐसा नहीं होता। हाँ, मरण जाए, मरण होवे तो देव चौथे गुणस्थान वाला हो जाता है, अदरवाइज क्रम से ही नीचे आते हैं। नहीं नहीं, क्षपक श्रेणी जिसने आयु बांधी बांधी है वो क्षपक श्रेणी चढ़ता ही नहीं है, यानी अभी बीच में मरने का सवाल नहीं है, जितनी आयु है उतने में वो 14 गुणस्थान पार करके मोक्ष हो जाएगा। देखो, संज्वलन के एक कषाय का अंश रहा है, अंश क्यों कहा, क्योंकि वो भी कैसा है, अभी वो बहुत मंद है ना, जैसे पहले गुणस्थान वाले को भी संज्वलन का उदय था, वो कैसा तीव्र उदय था, अनंतानुबंधी जैसा काम कर रहा था पहले गुणस्थान वाले को, चौथे वाले को तीव्र है पर थोड़ा कम तीव्र है, वो अप्रत्याख्यानावरण जैसा काम कर रहा है, पांचवे वाले का संज्वलन प्रत्याख्यानावरण जैसा है, उसका अनुभव ज्यादा है। अब छठे सातवें वाले का संज्वलन अभी उसको देशघाती का उदय हो रहा है, अभी सर्वघाती का उदय नहीं है उसके, उसमें दो प्रकार के परमाणु होते हैं, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। अभी जो मुनि है उनके देशघाती स्पर्धकों का उदय है, यानी संज्वलन का उदय भी चलता रहता है और उनका संज्वलन सॉरी संयम भी चलता रहता है, संयम में बाधा नहीं डालता, पहले संयम नहीं होने देते थे, उससे सर्वघाती का उदय था, कब तक, पांचवें गुणस्थान तक। अभी कैसा उदय है उनका, देशघाती का उदय हो जाता है, वो देशघाती प्रकृति, तो उसका भी एक अंश रहेगी रहा है, उसकी यहां गिनती नहीं, तो उसको नहीं के बराबर गिनकर यहां यथा जात रूप धर ऐसा उनको बता दिया, साधु पद के योग्य जो हुआ यथा जात रूप धर हुआ, ये अंतरंग की उनकी वितरांगता यथा जात रूप धर बताया, अनुभव सहित में राग रहित होकर ऐसी दशा धारण की, अनुभव तो है ही है, समय दर्शन तो है ही है, अब राग से भी रहित होकर वितराग दशा धारण की है। इस दशा से विरुद्ध अयथा जात रूपधर, यानी अभी जो संयमी नहीं है वो कैसे अयथा जात रूपधर है, उसका कारण मोह और राग द्वेष है। उसका कारण कोई बाहर की चीज, स्त्री पुत्र कुटुंब व्यापार है, ऐसा नहीं कहा है। समझ में आया लोगों को क्या लगता है? अरे हमारे कुटुंबी जन है ना, उनके कारण मुझे मोह हो रहा है, वो मुझे घर से नहीं निकलने देते है ना, हमारा पोता है ना मोह राजा ऐसा ही होता है, ऐसा ही लगता है, ऐसा होता नहीं है। नहीं निकल सकते अपने कारण, अपने मोह राग द्वेष के कारण, उसके कारण है। ये कह रहे हैं यहाँ पर, देखो क्या कहा, देखो
मैंने, आप अपने कारण कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अपने अपराध के कारण,
अपने अपराध के कारण, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ क्या लिखा है, उसका कारण मोह राग द्वेष है। मोह राग द्वेष किस में हो रहा है? अपने में हो रहा है। अपने से हो रहा है कि कर्म से हो रहा है कि बच्चों से हो रहा है? अपने से हो रहा है, ये नक्की करना। देखो यहाँ कहते उसका कारण कोई बाहर की चीज, स्त्री पुत्र कुटुंब व्यापार है, ऐसा नहीं है। हमें पैसे कमाने का लोभ है तो पैसा हमको लोभ करवाता है ना, कि हम स्वयं लोभ करते हैं उसमें। सामने कोई चीज मीठी पड़ी है, वो कहती मुझे खाओ मुझे खाओ, हमें अच्छा लगता है तो हम ही उठा के खाते ख्याल में ही ना बात, ये बाहरी चीज उसको कहीं नहीं कर रही, उसके कारण नहीं हो रहा है। बाह्य चीज, हाँ बाह्य चीज के ना कर्मों के कारण हो रहा है ना बाह्य चीज के कारण हो रहा है, अपने कारण से हो रहा है।
जैसे हमने देखा था, हाँ। घड़ी देखने से घड़ी का ज्ञान हुआ कि नहीं
होता,
तो कहते ज्ञान ज्ञान से हुआ, घड़ी से नहीं हुआ।
वैसे
ये मानने को तैयार नहीं कोई,
निमित्त से कोई परद्रव्य में उसका उसकी अवस्था बदलती नहीं है। ऐसा नहीं है, उस रूप नहीं होना है, ऐसा नहीं है। आप तो ज्ञान में है, राग में तो है ही नहीं है, तो उस रूप नहीं होना तो ये तो हम बहानेबाजी करते हैं।
और उसमें उस वक्त हम शास्त्र का आधार लेते हैं और स्वच्छंदता का पोषण करते हैं।
ऐसी स्थिति है कि जो पर्याय जिस समय होनी है वैसे ही, पर हमने उसको अपना सेफ्टी के लिए दलील बना दिया, हमारे ढाल बना दिए, क्या उस समय ऐसा होना था इसलिए हमको राग आया, ऐसा नहीं लेना है उसमें। समझ में आई ना? अरे स्त्री छोड़ दो, कुटुंब छोड़ दो। अभी कुछ लोग ऐसा कहते हैं, अरे स्त्री ऊपर कुटुंब ऊपर ऐसा द्वेष आ जाए कि प्रेम छूट जाए तब छोड़ सकते हैं, वो तो द्वेष हुआ। नहीं समझे, पहले प्रेम आता था, अभी द्वेष कर रहा है कि उनके कारण मुझे नहीं हो रहा, छोड़ दो उनको, छोड़ दो तो मेरा हो जाएगा, अभी द्वेष कर रहा है। बराबर हुआ ना। अरे अपने को समझना है पहले में, पहले अपने आत्मा का अवलंबन लेना है तो राग उत्पन्न नहीं होगे, तो उसको कहेंगे छोड़ा। अभी राग छोड़ता है तो द्वेष करता है, ख्याल में है ना बात? यही कह रहे, देखो स्त्री ऊपर कुटुंब ऊपर ऐसा द्वेष आ जाए कि प्रेम छूट जाए तब छोड़ सकते हैं, वह तो द्वेष हुआ। समझ में आया? वह तो गेय है, परवस्तु कोई इष्ट अनिष्ट है नहीं, ये वो इष्ट लगती है इसलिए हमको राग आता है, वो इष्ट अनिष्ट है ही नहीं है। हम अपने स्वभाव का लक्ष्य करेंगे तो राग तो पहले से अपनत्व छोड़ना है, राग के साथ जो एकत्व बना पड़ा है, राग रूप मैं हो गया। प्रश्न भी क्या पूछा, ऐसा ही होना था, यानी मैं राग रूप होना था, ख्याल में? कहाँ हमारी अभिप्राय में गलती पड़ी है?
देखो ये क्या हो रहा है, क्रमबद्ध पर्याय का आश्रय लेते हैं। क्रमबद्ध पर्याय को कौन जाने, जिसने अपने आत्मा को जाने वो
वही तो कहते हैं। यहाँ देखो मैंने क्या पॉइंट बताया, जरा पकड़ना बराबर। ये तो मैं राग रूप हुआ ये मान्यता के साथ क्या कह रहा है, जो राग आना था वो आया। पहले राग से हमारा नाता छोड़ दो तो राग जो, अरे वो तो परम में पड़ा चला गया, अपने में क्या हुआ? हम तो अपने में शामिल करते, होना था वो हो गया, ऐसा कह रहे। पहले राग के साथ नाता छुड़ाना है तो आगे की बातें नहीं होती। फिर आने वाला आता था, ये तो हमें आने वाला आता था कहकर भी, क्योंकि कोशिश गलत हो रही है। हम राग का या परद्रव्य का लक्ष्य करके उसको छोड़ना चाहते हैं। छोड़ने का तरीका क्या है, उपाय क्या है, अपना लक्ष्य करेंगे तो राग अपने से उसका एकत्व मिट जाएगा। वो हम आ सकते नहीं आ सकते, आए नहीं आए, वो बात अलग है। पहले में पहले उपाय क्या करना है, राग से एकत्व है वो छोड़ना है। हम तो बाहरी संयोगों में नहीं, हम ऐसे अरेंजमेंट करेंगे कि हम आ सकेंगे, वो तो ठीक है ना, वो आना हो तो आना हो जाएगा, परंतु फिर भी वो उस राग से एकत्व बना है। कौन सा? घर छोड़कर यहाँ आने का जो राग है उसमें एकत्व बना है। तो वही का वही रहा, पहले अशुभ के साथ एकत्व था, अभी शुभ के साथ एकत्व हुआ। यहाँ क्या पकड़ना है, नहीं जो सूक्ष्म पॉइंट है ना वो पकड़ में आए तो अच्छा रहेगा। देखो यहाँ क्या देखो, बोलते तो व्यवहार में तो हमें तो यहाँ सच्ची बात क्या है, आध्यात्मिक बात क्या है, रियलिटी क्या है, उसको समझना है। लौकिक में तो ये सब चल ही रहा है, अनादि से चल रहा है, और जितना राग से एकत्व अभी की बात नहीं है, अनादि से है, और वो जितने हम रागी द्वेषी होते रहते वो और दृढ़ 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 हो रहा है हर पर्याय में। वो तो चले, अभी बच्चा है, पहले क्या था, और कुछ चीज थी। यानी हम राग के साथ तो एकत्व बना है अपना। देखो यह क्या कहते, परवस्तु तो गेय है, परवस्तु कोई इष्ट अनिष्ट है नहीं। स्त्री हो, कुटुंब हो, शरीर हो, माता पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो, सब तो ज्ञान में गेय है। उन पर ऐसी बुद्धि अणगमा आना चाहिए। अणगमा यानी द्वेष, वो तो द्वेष हुआ। कोई क्या कहते, उनके प्रति ऐसा अच्छा नहीं लगना चाहिए, उनके प्रति कम राग भाव छोड़ दो। राग भाव छोड़ने जाते तो लक्ष्य तो उनका है तो द्वेष भाव हो जाता है। उनके कारण हो रहा है मान रहे, अभी उनके प्रति ये अच्छे नहीं, ये नहीं मेरे लिए नुकसानकारक है, इसलिए उनका द्वेष करने लगता है। पहले राग के साथ एकत्व था, अभी द्वेष के साथ एकत्व होने रहे। यानी दोनों को मिलकर राग एक शब्द हम रखेंगे, शुभ अशुभ में आ जाएगा वो। जैसे पर पदार्थ के प्रति राग करता था तो राग का स्वामी होकर मिथ्या दृष्टि था, अब द्वेष करते हैं कि तुम नुकसान करने वाले हो, तो कहते मूड है। यानी वो भी द्वेष के साथ एकत्व करके मिथ्या दृष्टि ही बना रहता है। परवस्तु नुकसान करती है, ऐसा कहां से आया? परवस्तु के हमने क्या देखा पहले में पहले, किसी भी द्रव्य का किसी भी परद्रव्य के साथ कोई भी संबंध नहीं, किसी जाति का कोई संबंध नहीं, ना निमित्त नैमित्तिक है, ना गेय, कोई प्रकार का कोई संबंध नहीं। पहले बात नक्की की थी हमने, है ना? तो कहते कि परवस्तु हमें नुकसान नहीं करती है। पर चीज तो पर में रहती है, पर मेरा है, और पर को इष्ट अनिष्ट मानकर जो राग द्वेष करते थे वह अयथाजात रूप भाव था। पर को मेरा माना और इष्ट अनिष्ट मानकर जो राग द्वेष करते थे ना वो भी मेरे है ऐसा लगता है, और ये क्या है, अयथाजात रूप भाव, आत्मा जैसा है वैसा नहीं, अन्यथा हमने मान लिया। वह अपने मुनिपने से विरुद्ध भाव था। मुनिपना में क्या होता है, यथाजात रूप, ऐसा उसका यथाजात रूप हो जाता है। पहले कैसा था, अयथाजात रूप, मुनि के ऐसा नहीं अभी। तो मुनिपना से विरुद्ध भाव, स्त्री कुटुंब व्यापार धंधा नहीं था ऐसा कहते हैं। समझ में आया? यानी परवस्तु है वो यथाजात रूपना परवस्तु में नहीं था। उसका कारण क्या था, मोह राग द्वेष। परवस्तु तो परवस्तु में है, उसके कारण हमें इष्ट अनिष्टपना नहीं, क्योंकि परवस्तु कोई इष्ट नहीं होती है ना कोई अनिष्ट होती है। ये हमारी मान्यता में हमने उसको इष्ट या अनिष्ट मानकर फिर हमारे राग द्वेष चालू हो जाते हैं। और वो भी कब होते हैं, अगर हमने मैं अपने ज्ञायक भाव में स्थापित किया, मैं तो जानने वाला हूँ, तो ये इष्ट या अनिष्ट लगे क्या? क्या वो केवल ज्ञान के ज्ञेय होकर रह जाएंगे? तो हमने अपने को क्या माना है? शरीर रूप माना है, अपने को राग द्वेष माना है, अपने को मनुष्य पर्याय जितना माना है, तो ये बातें सब इष्ट अनिष्ट लगने रखती है उसको। कोई कहे कि वकालत करते थे और वकालत छोड़ दी, डॉक्टरपना करते थे अब डॉक्टरपना छोड़ दिया, दुकान का व्यापार करते थे वह दुकान का व्यापार छोड़ दिया, कौन कहता है छोड़ दिया? तूने उसे कब किया था कि छोड़ दे? और ये छोड़ने का अभिमानी होकर बैठता है, मैंने इतना छोड़ा, मैंने इतना छोड़ा, इतने साल हो गया मैंने छोड़ दिया, है ना? तो गुरुदेव कहते तू करता कब था? परद्रव्य का करने वाला तो था नहीं, है ना?
ये तूने में से तू रस्व
हिंदी, हाँ, तूने हिंदी दीर्घ चाहिए, अच्छा याद दिला। मुमुक्षु कहते आगे बढ़े, मिथ्या तो में बढ़ते हैं, मैंने छोड़ दिया ऐसा मानने वाला मिथ्या तो की पुष्टि करता है और उसका अभिमान भी करता है, देखो मैंने ये सब छोड़ दिया। हाँ समझ में आया, क्योंकि वह कोई दोष की चीज नहीं थी, दोष तो तेरे अंदर में था। क्या कहा? ये जो लोभ के परिणाम थे ये मेरा है, मैंने इतना सब व्यापार धंधा खड़ा किया, ऐसा जो तुझे लगता था ये तेरा दोष था। देखो क्योंकि वह कोई दोष की चीज नहीं थी, क्योंकि परवस्तु कोई दोष की चीज नहीं होती है, दोष तो तेरे अंदर में था। देखो ना यहाँ क्या कहते हैं, अयथा जात रूप धर्पने के कारणभूत मोह राग द्वेषादि भाव, राग द्वेष वासना, वासना समझते, इच्छा, इच्छा को वासना कहते हैं, विषयादि इत्यादि भावों का अभाव होता ही है। ओहो मिथ्यात्व और राग द्वेष के भाव का जो यथाजात रूप मुनिपना है उससे विरुद्ध अयथाजात रूप उसका कारण जो मोह राग द्वेष उसका मुनि को अभाव होता है। क्या कहते हैं? पहले मिथ्यात्व राग द्वेष के भाव थे, अब मुनिपना हुआ यानी उनका अभाव हुआ, किनका? मोह राग द्वेष भावों का अभाव हो जाता है, और उनके अभाव के कारण, देखो ओहो मिथ्यात्व और राग द्वेष के अभाव के कारण, ये कल हमने टीका में विस्तार से पढ़ा था, हमने आप पांच पॉइंट्स बताए थे, पहले बहिरंग यथाजात रूप धर्म पड़ने के और फिर अंतरंग के बाद में बताए थे, तो ये पांच पॉइंट्स बताए थे। देखो उनके अभाव के कारण किनका अभाव हुआ है? मोह राग द्वेष का अभाव हुआ। पहले क्या था? वो मोह राग द्वेष का सद्भाव था, जब उनका सद्भाव था तो क्या हो रहा था वो अभी पहले पांच पॉइंट बताएंगे, जो कि उनके सद्भाव में होते हैं। देखो मोह राग द्वेष के सद्भाव में होती है ऐसी पांच चीज का वर्णन करते हैं, ये पहले पांच बातें बताएंगे मोह राग द्वेष के कारण होने वाले। जब मोह राग द्वेष का अभाव होता है तो इन पांच बातों का भी अभाव हो जाता है। बाहर की हो, पहले बहिरंग लेते हैं, समझ में आया? 205 नंबर की गाथा में बहिरंग की बात पहले समझाइए, भाई यह तो पहली चीज यह ली, पाठ में बहिर्लिंग है ना, उस बहिर्लिंग की ही बात करते हैं, वो र आधा चाहिए, बहिर्लिंग खोड़ो, ऐसा होता है उस वक्त अयथाजात रूप भाव है उसका अभाव होता है, और उसके भाव में यह चीज होती है, वह बहिर्लिंग नहीं है। समझ में आया? थोड़ी सूक्ष्म बात है, निश्चय व्यवहार की संधि की है, यानी निश्चय व्यवहार एक साथ है, तो जहाँ निश्चय वहाँ व्यवहार कैसे होते उसकी बात बताइए। फिर भी दोनों भिन्न है, यानी जहाँ ऐसा निश्चय है मुनि योग्य, वहाँ ऐसा बाह्य में भी उनका बहिर्लिंग होता है। अंतरंग और बहिरंग जो लिंग है उनकी वहाँ विद्यमानता रहती है, फिर भी बहिर्लिंग अलग बात है, अंतर्लिंग अलग बात है, बताए ना। फिर भी दोनों भिन्न है। भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ, उसमें गुणगुणी का भेद विकल्प भी पर है। क्या कहते हैं ये अखंड, अखंड एक अभेद, अखंड है ना, गुण ने गुण गुण और गुण ने द्रव्य, ये द्रव्य और ये उसके गुण, ऐसा भी भेद वहां नहीं। भेद यानी भेद का विकल्प, तो उसमें गुणगुणी का भेद विकल्प भी पर है, ऐसा भी कभी अभ्यास नहीं किया था, अनभ्यस्त था, बताया था पहले, यानी पहले द्रव्य गुण पर्याय का भी स्वरूप मालूम नहीं था। मैं तो अभेद अखंड एक हूं, अब कहते कि उसमें गुणगुणी के भेद का विकल्प पर है, ऐसा कभी अभ्यास नहीं किया था, यानी स्थूल राग द्वेष तो पर है ही है, परंतु आत्मा संबंधी जो विकल्प चलेंगे तो विकल्प भी राग है और वो भी मेरे से पर है, इसका कभी अभ्यास नहीं किया था। कहा था ना अभी तक उससे अनभ्यस्त था, ऐसा मैं कभी अभ्यास नहीं किया था, समझ में आया। तो मेरी चीज के अभ्यास में जो विरुद्ध भाव था, यथाजात से विरुद्ध अयथाजात, अयथाजात का कारण मोह और राग द्वेष, और जब तक मोह राग द्वेष है तो अब पांच बोल कहते हैं, यानी मोह और राग द्वेष के कारण क्या बातें हो रही थी वो पहले बताएंगे। अब मोह राग द्वेष का अभाव होने से उन बातों का भी अभाव होने वाला है, उसको क्या कहेंगे, बहिरंग यथाजात रूप उसने धारण किया, अभी कहेंगे वो। पहले में पहले अभी मोह राग द्वेष जब तक थे तब तक क्या हो रहा था, कहते वस्त्राभूषण का धारण, वस्त्र धारण कर रहा था, अलंकार जो है, अन्य अन्य चीजें धारण कर रहा था। देखो वस्त्र और आभूषण का धारण मोह भाव था, समझ में आया, वह धारण चीज बहिर्लिंग है, उसमें मोह कारण है। ये जो शरीर पर कुछ धारण कर रहा था वो तो बाह्य चीज है, बाह्य चिन्ह है, बहिर्लिंग है, परंतु वो मोह के कारण हो रहा था, समझ में आया। वस्त्र और आभूषण का धारण मोह भाव है, मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्व और उसके अलावा राग, मिथ्यात्व गया और बाद में वस्त्र आभूषण रहे, ऐसा कब होगा, मिथ्यात्व गया फिर भी वस्त्र और आभूषण रहे, गृहस्थावस्था में, चौथे पांचवे गुणस्थान में, उसकी बात है, यानी मिथ्यात्व जाते ही वो वस्त्राभूषण का त्याग नहीं हो जाता है। अभी कुछ बातें चलेगी, दवाई वगैरह पिएगा, व्यापार धंधा करेगा, है ना, शत्रु से युद्ध भी करेगा, गृहस्थ है ना, तो भी राग है, मिथ्यात्व चला जाने के बाद भी राग रहेगा कुछ काल के लिए, तो मिथ्यात्व गया और बाद में वस्त्र आभूषण रहे, उसका कारण राग है, समझ में आया। सम्य दृष्टि हुआ कि राग विकल्प और पर बिल्कुल मेरे नहीं, ऐसी दृष्टि होने पर भी, क्या कहा, अभी राग है कि नहीं है, है, पर राग मेरा है ऐसी जो दृष्टि थी वो निकल गई, यही कह रहे यहां पर कि सम्य दृष्टि हुआ कि राग विकल्प और पर बिल्कुल मेरे नहीं, ऐसी दृष्टि होने पर भी राग रहता है, राग आता है, विराग मैं करता हूं ऐसा नहीं है, राग मेरे लिए अच्छा है या बुरा है ऐसा भी कुछ हो नहीं रहा वहां पर, फिर भी वो आ रहा है और वो मेरे से जुदा है ऐसा उसने जान लिया है ना। तो कहते राग रहता है, ऐसी दृष्टि नहीं थी तब तक, कौन सी, जब समय दृष्टि नहीं थी, दृष्टि सम्यक नहीं थी तब तक तो वस्त्र और आभूषण मेरा है ऐसा मिथ्या तो भाव सहित का राग भाव था। देखो क्या डिफरेंस पड़ा, कोई पहले गुणस्थान वाला है और कोई चौथे वाला सम्यक दृष्टि है, दोनों ही वस्त्र धारण कर रहे हैं, अभी वही जीव लेते हैं, पहले मिथ्याती था, उसी को सम्य दर्शन हुआ। पहले जैसे वस्त्र आभूषण पहनता था वैसे ही पहन रहा है अभी भी, तो क्या डिफरेंस हुआ? मान्यता में पहले वो मेरे है ऐसा लगता था। हा? क्या देखो, पहले कैसा था? मिथ्या तो भाव सहित का राग भाव था, अभी मिथ्या तो निकल गया और राग भाव रह गया। उसमें इष्ट अनिष्टपना है, वो उसके कारण मैं सुंदर हूँ, उसके कारण मेरा कुछ, ये ऐसी बातें नहीं रही अभी। लेकिन जब ये मेरा कुछ नहीं, मैं तो ज्ञानानंद शुद्ध हूँ, ऐसे भाव में मिथ्या तो गया, लेकिन जब तक कपड़े वस्त्र पात्र का निमित्तपना रहता है तब तक राग है। राग की हयाती में वस्त्र और आभूषण होते हैं, क्या कहा? अब राग ही निकल जाएगा तो ये वस्त्र और आभूषण भी नहीं रहेंगे, वो लेने के भाव भी नहीं आएंगे। ख्याल में आई ना बात? पहले तो मिथ्या तो सहित था, अब मिथ्या तो चला गया है, अभी कपड़े के कारण अपने को कुछ सुंदर नहीं मान रहा है, क्योंकि मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं तो ज्ञानमय हूँ, ये शरीर रूप तो मैं नहीं हूँ। तो ये शरीर को कुछ श्रृंगार करने के भाव थे, उसके कारण मैं कुछ सुंदर नहीं दिखने वाला, मैं तो अरूपी जैसा हूँ वैसा हूँ। यहाँ क्या कहते देखो, राग न हो तो वस्त्र आभूषण होते नहीं, उसके कारण से होते नहीं, लेकिन ऐसा संबंध बताते हैं। आहा, ऐसा कभी उसने सुना नहीं, मुमुक्षु कहते उसके कारण से होता है। पूज्य गुरुदेव श्री, वस्त्र आभूषण है, राग का भाव है, ओ यथा जात रूप धर, ऐसा जो मोह राग द्वेष भाव का अभाव नहीं और उसका भाव है, यानी मोह राग द्वेष है, तो वस्त्र आभूषण है। देखो शरीर पर वस्त्र का रहना, लेकिन कहते कि राग का भाव है तो वस्त्र आभूषण है तो उसके कारण से, क्या कहा? देखो शरीर पर वस्त्र जो धारण हो रहे हैं वो किसके कारण है? नहीं, राग के कारण नहीं, वो वस्त्र के कारण, यही तो बता रहे। राग के कारण धारण किया ऐसा भी नहीं है, जब तक राग है तब वो वस्त्र धारण करने के भाव हो रहे हैं, पर वस्त्र का धारण करना, वो वस्त्र हमके पर वस्त्र को धारण करना छोड़ना होता नहीं इस जीव से। देखो ये वाक्य आगे का पढ़ो, देखो राग का भाव है तो वस्त्र आभूषण है, यहां तक बात है ना? जब तक राग है तब तक वस्त्र आभूषण भी है तो उसके कारण से, उसके ने वस्त्र वस्त्र के कारण से है, राग के कारण से नहीं, लेकिन इतना संबंध वहां है। समझ में आती है बात? वस्त्र है वो वस्त्र के कारण से है, राग के कारण से वस्त्र वहां आया ऐसा नहीं है, पर जब तक राग है तब तक वस्त्र है, राग नहीं रहेगा तो वस्त्र भी नहीं रहेगा, ऐसा उसमें संबंध है। फिर भी राग है तो वस्त्र आया कहां से? ऐसा हो ना, कोई भिखारी है उसके पास भी कपड़े नहीं है, उसको तो राग तो बहुत है धारण करने के, वस्त्र क्यों नहीं है? राग है ना उसको, तो वस्त्र क्यों नहीं है? तो इसीलिए राग के कारण वस्त्र नहीं आए, वस्त्र वस्त्र के कारण है। ख्याल में आई बात? राग के कारण से नहीं, लेकिन इतना संबंध वहां है। लेकिन राग का अभाव हो तो वस्त्र आभूषण का अभाव हो, तब उसे निमित्त से अभाव कहा और कहने में आता है। मात्र वस्त्र आभूषण छूट गया और राग छूटा नहीं, तो राग के भाव वाले ने उसका भी अभाव किया नहीं, क्या कहा? वस्त्र आभूषण तो छूट गया, फिर भी अभी उसके प्रति का राग नहीं गया, तो उसने छोड़ा ऐसा कहेंगे क्या? नहीं, ये कह रहे। फिर से पढ़ती हूँ, मात्र केवल वस्त्र आभूषण छूट गया और राग छूटा नहीं, तो राग के भाव वाले ने उसका भी अभाव किया नहीं। कठिन बात है भाई, पुराने आदमी को तो ऐसा कठिन लगे, ये पुराने हैं, कहो समझ में आया? पूर्व में स्थानकवासी में लोगों को तो हमारे पर तो बहुत प्रेम था ना, ये कांजी स्वामी पहले सानकवासी संप्रदाय में थे, वहाँ के तो वहाँ के साधु होते हुए थे और लोग तो बहुत मानते थे, उनकी सभा में तो हजारों लोग आते थे, हजारों लोग, और उनसे ही सुनना चाहते, भले वो दिगंबर की भी बात करते थे फिर भी हाँ उनका विरोध भी कोई नहीं करते थे, तो लोगों का बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम था। बाद में फेरफार हो गया तो कुछ लोगों को नहीं रुचा, क्या कहा क्या फेरफार हुआ, उनकी तो मान्यता सारनकवासी की छोड़कर दिगंबर की हो गई, उन्होंने जाहिर में दिगंबर पंथ अपनाया। बाहर का फेरफार हुआ तो ऐसा लगता था कि अरे रे यह तो हमारा वेश गया, मुहपत्ती गई, यानी पहले जो उन्होंने धारण की थी मुहपत्ती और बाकी जो कुछ उनके साधु के वेश, तो वो सब छोड़ दिया, रजोड़ा गया। ये रजोड़ा क्या होता है? अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो सूत्र का पिंची जैसा होता है वो, हाँ वो गया, ऊन का रेत, अच्छा ऊन का रेत, ऊन ऊन चलती है, ऊन ने तो लोकर जो होती है तो प्राणी उनकी मिलती है, वो तो छूटे हुए होते हैं, वो नीचे गिरे हुए होते हैं, पता नहीं अभी क्या है। हाँ जो कुछ है अभी वो उन्होंने छोड़ दिया, वो छोड़ दिया हमको मूल पे, क्या मुंह पत्ती गई रजोना गया, यह मूर्ति आई, क्या कहा, स्थानकवासी मूर्ति को नहीं मानते, चूंकि स्थानकवासी संप्रदाय में थे तो गुरुदेव ने उनके शास्त्र में से वो बात बताई थी कि देखो यहाँ मूर्ति का भी स्वीकार है करके, बहुत जगह उन्होंने, कल परसों बात आई थी ना मोक्ष पहुड़ में, के संप्रदाय में थे तब उन्होंने बिल्कुल शास्त्र के उद्धरण उनके निकाल के बताया था, देखो यहाँ मूर्ति का निषेध नहीं है कहीं पर भी, मूर्ति की मान्यता है, वहां पर मूर्ति का स्वीकार है। ये तो बाद में किसी की कल्पना आती है ना कि मूर्ति मानने में दोष है, इसलिए वो छोड़ दिया। पहले तो एक संप्रदाय थे उसमें से छोड़कर वो स्थानकवासी निकला, पहले तो एक श्वेतांबर था उसमें से स्थानकवासी अलग निकाला, अभी उसमें वो तुलसी अलग निकाला है ना, तेरापंथी, वो तो दया भाव अनुकंपा उसको पाप समझते हैं, वो और अलग है, हाँ पाप समझते हैं। अभी प्राणियों को चारा खिलाना पानी पिलाना ये सब पाप है ऐसा कहते हैं।
मैं पिला नहीं सकती ऐसे नक्की करना।
अरे उनमें वो बात है ही नहीं है, परंतु वो क्या करते हैं ऐसा
पूछ रहे, उसको उत्तर दिया,
ये मूर्ति आई और कहे कि पुण्य में धर्म नहीं, व्यवहार में धर्म नहीं, सब बदल गया। यानी अभी स्वामी जी क्या बता रहे हैं, पुण्य में धर्म नहीं है, पहले की मान्यता छोड़ दी, पहले जो बताते थे वो सब छोड़ दिया, व्यवहार में धर्म नहीं है, ऐसा बात आ गई, सब बदल गया। कहते अरे भगवान आत्मा में जब तक राग द्वेष और मोह रहते हैं तब तक मोह के अनुसार परवस्तु मेरी ऐसा निमित्तपना रहता है, और राग रहता है तो वस्त्र आभूषण भी उस कारण से रहते हैं। समझ में आया, राग के साथ संबंध है, हाँ बाहर से छूट गया और राग छूटा नहीं तो वस्त्रादि छूटा ऐसा व्यवहार से भी कहते नहीं, क्या कहते हैं, हो सकता है किसी कारण से वो वस्त्र किसी ने छीन लिए उससे, क्या कहा, बाहर से छूट गया, किसी ने वो चोरी कर गया, आभूषण सब ले लिए, वस्त्र भी निकाल के नंगा कर दिया, उसको छूट गए ना सब, तो कहते फिर राग छूटा नहीं तो वस्त्रादि छूटे ऐसे कहेंगे नहीं। समझ में आई बात, ये क्या लिखा है उसको हमको समझना है बराबर। मुमुक्षु कहते राग छूटा है या नहीं वह नक्की करने की बात है गुरुदेवश्री, उसकी बात है। भगवान आत्मा चैतन्य का भान, यानी जो ज्ञान दर्शन में ऐसे जो मैं स्वयं हूं उसका भाने ने उसके अनुभव होना, सम्यक दर्शन हुआ, अनुभव हुआ, चैतन्य ज्योत ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। तदुपरांत यानी इन एडिशन स्वरूप में आरूढ़ होकर, राग का अभाव होकर, पहले तो सम्यक दर्शन तो हुआ था, अभी इन एडिशन क्या हुआ, मुनिपना धारण करने जा रहे हैं, राग का भी अभाव कर दिया। पहले मिथ्यात्व का अभाव हुआ था, अब राग का भी अभाव हुआ। तो कहते तदुपरांत स्वरूप में आरूढ़ होकर, ये डायरेक्ट उसने राग का अभाव किया ऐसा नहीं कहा, वो स्वरूप में और लीन हो गए तो राग उत्पन्न नहीं हो गया, तो उसको कहेंगे राग का भी अभाव कर दिया भी नहीं कहा, हो गया कहेंगे। तो राग का अभाव होकर यथाजात रूप हुआ, उसका नाम मुनिपना कहते हैं। ख्याल में आई मत, पहले समय दृष्टि थे, स्वरूप में और आरूढ़ हुए ने स्वरूप में और लीनता धारण की, तब वो जो तीन कषाय चोकड़ी है वो अभी उत्पन्न नहीं होगी, वो रही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, यथाजात रूप हो गए। उस मुनिपने के योग्य से विरुद्ध वो यथाजात रूप धर, जैसी वितरकता है उससे विरुद्ध वो यथार्थ, यानी क्या कि मोह राग और द्वेष, और मोह राग द्वेष की हयाती में वस्त्र और आभूषण थे, संबंध था, वहां राग की हयाती बताते हैं, यानी वस्त्र वगैरह धारण किए हैं वो क्या है, राग की हयाती बता रहे। जहां शरीर पर वस्त्र है तो ऐसा बताते हैं कि अंदर राग है, मुमुक्षु शरीर के प्रति राग है। पूज्य गुरुदेव श्री कहते वस्त्र के प्रति भी राग है और शरीर के प्रति भी अंदर राग है। क्या कहते हैं, खाली शरीर का राग है और वस्त्र का राग नहीं, ऐसे थोड़ी है हा? फिर वो नीला पहना के लाल पहना के और क्या, उसमें कितना राग द्वेष चलते रहते कि नहीं रहते, ये जाड़ा नहीं चाहिए, पतला चाहिए, जो कुछ सॉफ्ट चाहिए होता ही है। समझ में आया, चाहे तो समकीति हो, समझ में आया, चाहे तो ग्यारह परिमा धारण करने वाला हो, सम्यक दर्शन अनुभव सहित आनंद कंद की धारा में बहता हो, लेकिन जब तक वस्त्र का टुकड़ा पड़ा है, ग्यारहवे प्रतिमा वाले को लिया, गुणस्थान ने प्रतिमा वाला, क्या नाम है उनका, हाँ लक्ष्मी, नहीं नहीं उसका नाम ही नहीं, वो कौन होते हैं, उन जीवों को क्या कहते हैं, अलक है और शुल्लक है, शुल्लक तो दो वस्त्रधारी है और अलक को तो मात्र लंगोटी है, हाँ लंगोटी है, तो वस्त्र का टुकड़ा भी है, क्या कहा, शुल्लक अलक दोनों की प्रतिमा एक बताए, पहले की भूमिका शुल्लक की है, बाद में अलक की। तो जब तक वस्त्र का टुकड़ा है, वो क्या बता रहे, राग है ना उतना, हाँ तो जब तक वस्त्र का टुकड़ा पड़ा है तब तक राग का भाव है, ऐसे हयाती धराते हैं, ऐसा कहते हैं, और वस्त्र छूट गया इसलिए राग का अभाव हुआ, ऐसा नहीं, नहीं समझे, वस्त्र छूट गया, अरे हो सकता है चोरी हो गया, किसी ने निकाल दिया, ऐसा भी हो सकता है, पर राग का अभाव नहीं हुआ, राग का अभाव हो जाए तो वस्त्र गया, ऐसा कह वस्त्र छूटा कहेंगे, यहाँ तो राग का अभाव स्वभाव के आश्रय से हुआ, ये महत्व की बात है, नहीं तो राग का अभाव होकर हम कहेंगे द्वेष हुआ वस्त्र के प्रति, निकाल दिया, उसमें कुछ जल गया था, कुछ बिगड़ गया था इसलिए निकाल दिया, ऐसा भी हो सकता है ना, उसकी बात नहीं है, स्वभाव के आश्रय से, क्या लिखा है, स्वभाव के आश्रय से राग का अभाव हुआ तो वस्त्र का अभाव हुआ, ऐसा व्यवहार द्रव्यलिंग कहने में आता है, उसको हम व्यवहार से द्रव्यलिंग कहेंगे, ऐसी बात सूक्ष्म बहुत, ये भी व्यवहार से कब कहेंगे, जब उतना ही राग का अभाव होगा तब जो वस्त्र का अभाव हुआ तब उसको सच्चा द्रव्यलिंग यानी व्यवहार भी कहेंगे उसको, ऐसी बात बहुत सूक्ष्म भाई। वस्त्राभूषण का धारण, अब पहली बात हुई ना वस्त्र की बात हुई, अब दूसरा पॉइंट क्या था, जब राग द्वेष थे, मोह राग द्वेष थे, तब तक क्या क्या हो रहा था, सिर और दाढ़ी मूछों के बालों का रक्षण। प्रश्न, ऐसी नई बात कहाँ से ले आए? समाधान, कहाँ से ले आए? अंदर है कि नहीं, है कि नहीं? अंदर कहाँ से आया यह? यहाँ ऐसा है कि नहीं? देखो, अरे मूल गाथा में बात है ना, सिर के बाल और मशरू ने दाढ़ी और मूछ के बाल, ऐसे वहां लिखा था। इसका अर्थ कहाँ से लाया? अर्थ आया आत्मा में से। समझ में आया? संतों की कथनी अलौकिक बात। कुंदकुंदाचार्य, अमृतचंद्राचार्य देव क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध सिद्ध करते हैं, और व्यवहार लिंग और निश्चय लिंग कैसा होता है, यह कैसे सिद्ध करते हैं? अब यही रुकेंगे हम, बाकी चीज कल पढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। तारा भी